पुरोचन, अरे अब यह समाचार आया ही था कि पांडव वर्णाव्रत में पहुंच गए हैं। उसके पीछे ही तुम्हारा दूत यह वार्ता लेकर आ गया कि पांडव जलकर मर गए। तुम जैसे स्वामी भक्त और तत्पर सेवक हैं, तभी तो इस दुर्योधन का वृक्ष सदा उन्नत रहता है। आह, यदि तुम जीवित लौटकर आए होते तो मैंने तुमको महाद्वार पर ही अलिंगन में कस लिया होता। तुम्हारी स्वामी भक्ति तुम्हारे प्रत्येक कार्य से प्रकट हो गई है। इस दुर्योधन से प्रेम होने के कारण ही एक चंचल मन की हरणी को उसके 5 शावकों के साथ तुमने जलाकर राख कर दिया। इतना करके ही तुम नहीं रुके, अपने राजा के लिए एक अत्यंत आनंददायक वार्ता भी तुमने अपने सेवक के द्वारा भिजवा दी। पांचाल देश के युवराज की यज्ञ सेना के स्वयंवर की वार्ता लेकर जब तुम्हारा सेवक राजनगरी में आया, तब मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। पांचाल की युवराज्ञ यज्ञ सेना, द्रुपद राज की रूप गर्विता कन्या द्रौपदी, मैंने यह सुना था कि उसके देह से सुगंध आती है। यज्ञ सेना सुगंध की चलती फिरती जीवित पात्र थी। सुनते हैं उसका रंग कुछ सांवला है, इसीलिए वह सांवले रंग के परंतु मस्त गंध वाले भूचंपा के फूल जैसी दिखाई पड़ती होगी। द्रुपद राज द्वारा संतान प्राप्ति के लिए किए गए महायज्ञ से यह उत्पन्न हुई थी। मैं स्वयंवर के प्रण में उसको जीतूंगा। द्रुपद बलवान राज्य से कुरुओं का रक्त संबंध स्थापित होगा, नहीं तो द्रौपदी जैसा रत्न हस्तिनापुर के राज मुकुट के सिवाय अन्यत्र कहां सुशोभित हो सकता है। यदि पुरोचन स्वयं इस वार्ता को लेकर आया होता तो मैं उसको अपने गले का पुखराज का हार पुरस्कार में दे देता। कर्ण जैसा पृष्ठ पोषक, द्रौपदी जैसी अर्धांगिनी, दुशासन जैसे शक्तिशाली, 99 भाई, दुशला जैसी बहन, शकुनी मामा जैसे कुशल राजनीतिज्ञ और पुरोचन जैसे हथेली पर सिर लिए हर समय मेरे लिए प्राण अर्पण करने को उद्यत सैकड़ों हजारों सैनिक, इनसे कौरवों का राजदंड इस आर्यावर्त में हिमालय जैसा ऊंचा रहेगा। मैं अपनी समर्थ भुजाओं से उसको ऊंचा उठा रखूंगा। यह मेरा एक सुखद स्वप्न था। प्रत्येक जीवित व्यक्ति कोई न कोई एक सुख स्वप्न तो देखता ही है। उसको साकार करने के लिए वह जीवन भर प्राण प्रण से प्रयत्न करता रहता है। मुझको भी ऐसा ही प्रयत्न करना था, अविरत परिश्रम करना था। अविरत परिश्रम ही जीवन का अर्थ है। अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए सतत अविरत अखंड प्रयत्न करना ही पड़ता है। राज उसी पर खड़े रहते हैं। मेरे मार्ग से पांडव का एक बहुत बड़ा रोड़ा सदा के लिए दूर हो गया था। पांडव चले गए, उनकी याद भी अब क्यों? स्मृति से केवल अकर्मण्यता ही उत्पन्न होती है। जल्दी उन पांडवों की तिरही के निमित्त विशाल भोज का आयोजन कर मैंने उनकी मृत्यु पर राजमुद्रा अंकित करने का निश्चय किया है। रोने का नाटक मुझसे नहीं हो सकेगा, इसीलिए वह काम मैंने शकुन मामा को सौंप दिया है। नगरजन भोजन करेंगे और डकारों के साथ पांडवों को भूल जाएंगे। राजा को तो सदैव इसी प्रकार व्यवहार करना पड़ता है। राजा का जीवन बाण की तरह सदैव नाक की सीध में ही नहीं जाया करता। कभी वह गदा की तरह गोल फिरता है तो कभी खड्गे की तरह पार्श्व में प्रहार करता है। कभी कभी तो भूषणों की तरह वह केवल पत्थर ही फेंकता है। सत्य राजा का मार्ग निश्चित नहीं करता, बल्कि राजा जिस मार्ग को निश्चित करता है उसी को सत्य के रूप में समाज स्वीकार करता है। पांडवों की मृत्यु की सूचना शकुनि मामा ने कर्ण को दी। मैंने सोचा था कि इस समाचार से वह प्रसन्न होगा, परंतु मामा ने जो कुछ कहा उसको सुनकर मैं ठगा सा रह गया। पांडव चल बसे, यह सुनते ही वह दोनों हथेलियों से अपना सिर दबाकर क्षण भर को प्रतक्षण नीचे बैठ गया। उनको किसने मारा है? उन 5 वीरों को मारने वाला कौन बलवान योद्धा पैदा हो गए? राजमाता कुंती देवी तो सुरक्षित है ना? आदि आदि प्रश्नों के बौछार उसने मामा पर कर दी। मामा ने उतनी शांति से कहा, वे एक दुर्घटना में वर्णावत के अरण्य में जल गए। कम से कम राजमाता कुंती देवी ही बच जाती, परंतु विधाता के आगे किसी का क्या वश चलता है? इजाज़ सुनकर उसने कुछ नहीं कहा। हार कर स्वप्नी मामा ऊब कर उसके महल से चले आए। उसने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। गवाक्ष से एक टक गंगा की ओर देखता रहा। संध्या समय उससे मिलने के लिए मैं स्वयं उसके महल में गया, लेकिन शोण ने मुझसे कहा कि अन्य किसी से कुछ न कह केवल शोण को यह बताकर कि मैं चंपा नगरी को जा रहा हूँ, वे अकेले ही चले गए। अब 15 दिन तक तो मुझको राजनगरी में मिल ही नहीं सकता था। हस्तिनापुर तो वह लौटेगा ही, यदि नहीं लौटा तो एक शंका मेरे मानस पटल पर गिरने लगी। 7 बहुत से नगरजन पांडवों के उत्तर क्रिया का भोजन कर गए। सब मैंने आग्रहपूर्वक पंच पकवान सबको परोसे थे। पांडव चल बसे यह कहते ही कुछ व्याकुल हो गए थे, कुछ एकदम रो पड़े, कुछ तो भावावेश में राजमाता कुंती देवी की भित्ति चित्र के सम्मुख लोट लगाने लगे। सचमुच यह हस्तिनापुर भी कैसे कैसे अंदर श्रद्धालु और व्यक्ति पूजक लोगों से भर गया है। कभी कोई भी मर जाए इन लोगों को बस रोना आता है। मुझको तो कभी कभी यह संदेह होने लगता है कि यह गंगा नदी हिमालय का हिम पिघलने से नहीं बल्कि उन दुर्बल मन वाले रुदन करते लोगों के आंसू से ही बनी है। रोकर छाती की पसलियाँ पीट कर क्या मरा हुआ मनुष्य वापस आया करता है? लेकिन यह बात इन लोगों को कौन समझाए, सभी तो बैठे बैठे रो रहे थे। जनसमूह मूर्ख होता है, यह सत्य है। इस घटना को से मुझको एक बार फिर यह अनुभव हुआ कि शकुनी मामा कितने बुद्धिमान और कुशल हैं। मैं उनको अपना परामर्शदाता तो मान ही चुका था, लेकिन इस घटना ने अब उस पर राजमुद्रा अंकित कर दी थी। भोजन की लियाए सभी नगरजनों से पांडव चल बसे कहकर उत्तरी का छोर आंखों से लगाते हुए अंत में उन्होंने कहा, यह आपका और हमारा दोनों का दुर्भाग्य कि पांडवों का मृत शरीर दहन के लिए भी हमको प्राप्त नहीं हो सके। मानो वो पुण्यात्मा हमारे इन क्षुद्र हाथों से अंत्याग्नि भी नहीं लेना चाहते थे। मामा का वह कपटपूर्ण कथन सबको ज्वलंत और अत्यंत हार्दिक प्रतीत हुआ। उनकी आत्माओं की शांति के लिए यह भोजन है, यदि आप ग्रहण नहीं करेंगे तो उनको शांति नहीं मिल सकेगी। मामा के इस कथन ने सबको विवश कर दिया। प्रत्येक जन भोजन कर गया। मामा मेरा चलता फिरता वास्तविक बाण थे, कहीं मारो विफल नहीं होगा। यदि बाण दंड बाहर निकल जाएगा तो फल तो लक्ष्य में अटका ही रह जाएगा। सबके अंत में हम सारे कौरव भोजन करने बैठे। मामा वही थे, लेकिन मेरे पहले ही ग्रास पर एक दूध दौड़ता हुआ एक अविश्वसनीय सूचना लेकर आया। ऊपर नीचे होते हुए छाती संभालता हुआ वह रुक रुक कर बोला, महाराज, दक्षिण पांचालों के राज्य में किसी ब्राह्मण पुत्र ने हिडिम्ब और बकासुर इन अजेय नरमांस भक्षक राक्षसों को द्वंद्व युद्ध में केवल मुष्टि प्रहारों से ही जान से मार दिया है। उस वार्ता को सुनते ही मेरे मन में एक संदेह पहुंच गया कि भीम अभी जीवित है क्या, और मुंह का ग्रास मुंह में रह गया। लेकिन इस प्राणांतक संदेह को मैंने क्षण भर में दृढ़ता से दूर कर दिया, क्योंकि संदेह दूब घास की तरह होता है। एक बार जड़ पकड़ लेने पर फिर वह बढ़ती ही जाती है और अंत में वह एक घने वन में रूपांतरित हो जाती है। भुजा में बांधे चांदी की डिबिया पर क्षण भर पहुंचेली फिरा लेने के बाद ही मुझको थोड़ा सा समाधान मिला। पुरुषन द्वारा दी गई दग्ध भीम की जली हुई काली छिल अंगूठी इस डिबिया में मेरा मन स्थिर हो गया। उस दिन मैंने आकंठ भोजन किया और फिर उस पर केसर युक्त सुगंधित तांबुल खाया। 8 मेरी छाती कितनी भी निर्भय क्यों न हो, आखिर था तो मैं एक मनुष्य ही, और इसलिए कभी कभी मेरा मन इस प्रश्न के सतत प्रहारों से घबरा जाता कि मैंने जो कुछ किया था उचित है या अनुचित। मनुष्य बुद्धि और संपत्ति के बल पर संसार को सहज ही धोखा दे सकता है, लेकिन अपने मन को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व का प्रतिबिंब उसके मनरूपी दर्पण में स्पष्ट झलकता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति एकांत में अपने इस निर्णय दर्पण में अपने ही विविध रूप देखा करता है। किसी किसी समय ये रूप बड़े आकर्षक और अभिमान करने योग्य होते हैं, परंतु कई बार यह इच्छा होती है कि ये रूप आंखों के आगे भी न आए तो अच्छा हो। बुरा कृत्य करने से पहले आत्माभिमान, साहस या कौतूहल से उत्पन्न झूठा उत्साह प्रत्येक में होता है, लेकिन एक बार जब इस उत्साह से वह कृत्य हो जाता है तब फिर हृदय में बाण लगे पशु की तरह मन किसी का सबल आश्रय ढूंढने को इतस्तत दौड़ने लगता है। भाग्य से किसी को वह आश्रय मिल जाता है, पर किसी को जीवन भर व्यर्थ दौड़ते ही रहना पड़ता है। पांडवों को जीवित जलाकर मैंने क्या पाया, कुरुवंश के युवराज और पितामह भीष्म के संबंधी के लिए यह शोभनीय था क्या? ये तथा ऐसे ही अनेक प्रश्न मेरे मन में चक्कर काटने लगे। क्या इस राज्य को और संपत्ति को आज तक कोई भी अपने साथ ले जा सका है? इस दिग्विजयी कुरुवंश में अनेक राजा हो गए, उन्होंने युद्ध किए, अश्वमेघ के घोड़े सारे आर्यावर्त में घुमाए, अतुल संपत्ति का यथेष्ट उपभोग किया, लेकिन जैसे मिट्टी में खेलने वाला छोटा बालक अपने हाथ लगे खिलौनों को क्षण भर पहले जो प्राण प्रिय था उसको ज्यों का त्यों छोड़कर दूसरे ही क्षण अन्न और चल देता है, वैसे ही वे लोग आए और चले गए। कहाँ चले गए, कहाँ से आए थे, क्या अवशेष बचा है उनका, केवल स्मृतियाँ, अच्छी बुरी उथली गंभीर, स्फूर्ति देने वाली और लज्जित करने वाली। कल को मेरे पश्चात मेरी भी ऐसी स्मृतियाँ रह जाएंगी। कैसी होंगी वे? पांडवों को मैंने ही चलाया है, यदि किसी को ज्ञात हो गया तो? छी, कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे कोई भिक्षु अपना ही डंग टेढ़ा घुमाकर क्रोध में अपनी पीठ में मारे, ऐसे ही उस विचार से मेरा मन स्वयं को भी दोष देने लगा। मन अस्थिर हो जाता, उन पांच भाइयों के हंसमुख चेहरे सतत मेरी आंखों के आगे फिरने लगते, मन व्याकुल हो जाता। मन सचमुच व्यक्ति मनुष्य के पास मन न होता तो हो सकता है कि वह अधिक सुखी होता, लेकिन यह कैसे संभव था? मन के बिना मनुष्य यानी दंड के बिना गधा, छी, मन के बिना जीवन यदि अधूरा है तो भी क्या, इतने झमेले तो नहीं होंगे। इस विचार से और ऐसे ही अनेक परस्पर विरोधी विचारों से मैं घबरा जाता। ऐसी स्थिति में हर बार एक ही व्यक्ति मुझे सदैव आशा की एक प्रखर किरण दिखाया करता था, और वह था अश्वत्थामा। कर्ण के साथ वह सदैव राजभवन में आता रहता था। उसको और कर्णों को एक साथ देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे एक विशाल नद के तट पर एक सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा हो। कर्ण अपने पुष्ट और तेजस्वी स्वर्णिम शरीर के कारण नद जैसा दिखाई पड़ता था, अश्वत्थामा अपने सौम्य और शांत चेहरे के कारण मंदिर जैसा लगता था। पांडवों की ऐसी स्मृतियों के कारण एक भूला प्रश्न बार बार मेरे मन में झांकने लगता, जीवन क्या है? मैंने अश्वत्थामा से पूछा, गुरुपुत्र, जीवन क्या है? उसने शांतिपूर्वक कहा, राजन, जीवन क्या है यह अनेक प्रकार से बताया जा सकता है, परंतु तुम जैसे कुरुवंश के वीर के लिए वांछित भाषा में यदि कहना हो तो कहना पड़ेगा कि जीवन म्यान में रखा हुआ खड्ग है। म्यान में रखा हुआ खड्ग, सो कैसे? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ राजन, मनुष्य का शरीर म्यान जैसा ही होता है, और उसका मनुष्य म्यान में रखे हुए खड्ग की तीक्ष्ण धार जैसा होता है। वाह अश्वत्थामा, जीवन के संबंध में बड़ी अच्छी कल्पना रही तुम्हारी। नहीं राजन, इस कल्पना में अभी एक कवि है और इस जीवन रूपी खड्ग की आत्मा एक मूठ होती है। आत्मा खड्ग की मूठ? हाँ, आत्मा उस जीवन रूपी खड्ग की मूठ ही है। उस मूठ का उस खड्ग से और म्यान से संबंध है भी और नहीं भी है, लेकिन जब मूठ ही नहीं होगी तो खड्ग चलेगा कैसे? उसके बिना म्यान अच्छी लगेगी क्या? आत्मा के बिना शरीर और मन भी वैसा ही है। आत्मा के बिना न शरीर का कोई महत्व है न मन का। तो फिर अश्वत्थामा, शरीर नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है? तुम्हारी भाषा में यदि पूछा जाए तो म्यान नष्ट हो जाने के बाद मूठ का क्या होता है? मेरे मन में पांडवों की स्मृति अब भी निकल नहीं पा रही थी। भूल रहे हो राजन, म्यान का नाश होने से मूठ का क्या बिगड़ेगा? वास्तव में मूठ कभी म्यान में रहती है क्या? रहती भी है तो फल के रूप में। मन के रूप में आत्मा का कार्य भी ऐसे ही चलता रहता है। कहने को शरीर में है और भी नहीं भी है। संक्षेप में यही कहना हो तो आत्मा सर्प की तरह होता है। आत्मा सर्प जैसा? कितनी आश्चर्यजनक बात तुम कर रहे हो आज गुरुपुत्र। आत्मा सर्प जैसा कैसे हो सकता है? जैसे सर्प एक केंचुली छोड़कर दूसरी नई केंचुली धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करता है। अश्वत्थामा अत्यंत शांत से बोला। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थी, मानो वह आंखों से ही कह रहा था, आश्चर्य से मत देखो, मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। मेरा कौतूहल और अधिक बढ़ गया। प्रश्नों का उत्तर देते समय वह निश्चय ही कहीं तो पकड़ में आएगा, यह सोचकर मैंने उसको फिर छेड़ा। अश्वत्थामन, आत्मा को सर्प की उपमा देने वाले तुम निश्चय बुद्धिमान और विचारशील हो, लेकिन तुम यह जो कह रहे हो कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करता है, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि पुनर्जन्म होता है? हाँ राजन, मैं इस समय तुमको अपने सम्मुख देख रहा हूँ। यह जितना सत्य है उतना सत्य यह भी है कि प्राणी का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो चेतना है वह अमर है। तो इस भीम ने पुनर्जन्म ले लिया होगा? इस विचार मात्र से मेरे हृदय में एक भयंकर द्वंद्व मच गया। जैसे तैसे अपने को संभाल कर मैं बोला, तो फिर पुनर्जन्म का यह सत्र कहाँ तक चलेगा और जगत का अंत आखिर कहाँ होगा? राजन, समुद्र के लहरें कभी देखी हैं क्या? उनको कभी कोई गिन सकता है क्या? वे कहाँ से आती हैं और कहाँ जाती है, क्या कोई बता सकता है? यह पुनर्जन्म भी वैसा ही है। तो फिर अंत में इस जगत का क्या होगा? राजन, अंत में इस शब्द को निकाल दो, क्योंकि काल का आदि और अंत दोनों ही नहीं है, काल अखंड है। जो लोग यह मानते हैं कि काल अखंड है, वही लोग यह स्वीकार करते हैं कि आत्मा अनंत है और अनंत होने के कारण अमर है। पृथ्वी पर जो पशु पक्षी वृक्ष लताएं मानव आदि हैं, उनकी आत्मा अमर है। आत्मा यदि शरीर से इतने सहज रूप में संबंधित है, तो फिर मनुष्य पाप क्यों करते हैं? बहुत सुंदर राजन, बहुत ही सुंदर प्रश्न तुमने पूछा है। पहले तो अच्छी तरह निश्चित करना चाहिए कि पाप है क्या। पाप का अर्थ है आत्मा का निकृष्ट आविष्कार। जब जब मनुष्य अपने शरीर के भीतर एक शाश्वत स्वर से मन के स्वर को मिलाने के लिए तैयार नहीं होता, तभी इस विसंगति से इस निकृष्ट आविष्कार का निर्माण होता है, इसी को संसार पाप कहता है। तो क्या उपभोग भी पाप है? बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता तो मनुष्य की यह पाचेंद्रियां ही नहीं मिली होती। उपभोग का अर्थ पाप नहीं, परंतु उपभोग में आसक्ति की चरम सीमा अवश्य पाप है। इस आसक्ति से ही विद्रोह और युद्ध भड़कते हैं, व्याधियां और असंगतियां बढ़ती हैं। तो फिर इस सर्वनाशी आसक्ति के बंधन से संसार कम मुक्त होगा? इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह लोग हम लोग चर्चा जीवन के एक मध्यस्थ तीर्थ क्षेत्र पर बैठकर कर रहे हैं। अभी तो बहुत मार्ग तय करना है। फिर भी अपनी सुविधा के लिए यदि काल को बांधने की बात कही जाए तो उसमें शायद करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, और वही पहला मंगल दिन होगा जब मनुष्य आत्मा की परिधि में प्रवेश करेगा। मुझ जैसे असंख्य पागल केवल ऐसे ही दिन प्रतीक्षा में जीवन यापन करते रहते हैं। क्यों कर्ण, यही बात है ना? समीप ही बैठे हुए कर्ण से उसने प्रश्न किया। बहुत देर से चलते हुए हमारे विवाद को वह शांतिपूर्वक सुन रहा था। शायद वह किसी गंभीर विचार में डूबा हुआ था। पहले तो यही उसकी समझ में नहीं आया कि अश्वत्थामा उससे कुछ पूछ रहा है। अश्वत्थामा ने अपनी हथेली से जब उसके पुष्ट कंधों को दबाया, तब वह अपने विचार तंद्रा से जागा। अश्वत्थामा उससे कुछ पूछ रहा या पता लगने पर उसकी ओर देखता हुआ वह बोला, अश्वत्थामा तुम बड़े तत्वचिंतक हो। नहीं कर्ण, प्रत्येक मनुष्य अपने ढंग से तत्वचिंतक होता है, तुम भी हो। कर्ण ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया, वह केवल मुस्कराया। हंसी की एक मोहक रेखा उसके गोलाकार हिरण्यवर्णी चेहरे पर गाल से उत्पन्न होकर कानों के पास विलीन हो गई। हवा के मंद झोंके से गुड़हल के रक्तवर्णी फूल के पीतवर्णी परागदंड जैसे हौले से उठते हैं, वैसे ही उस रेखा से उसके कानों के मांसल कुंडल जाने अनजाने ही सुंदर ढंग से हिल उठे। दुग्धपान के बाद वह और अश्वत्थामा दोनों महल से चले गए। अश्वत्थामा के कुछ विचार फिर मन के प्रांगण में दो शत्रुओं की तरह एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। जितने स्पष्ट रूप से मैं तुमको देख रहा हूँ उतना स्पष्ट यह है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। जब मनुष्य अपने शरीर के शासक स्वर्ग से छल करता है तभी पाप की उत्पत्ति होती है। पुनर्जन्म, पाप, भीम, आत्मा, सर्प, आसक्ति आदि शब्दों के घनाघात मस्तक में होने लगे। शरद ऋतु के दिन थे लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शरीर जल रहा हो। प्राण घुटने लगे, मन को कुछ विश्रांति मिलेगी यह सोचकर मैं सौंत पर आया। कर्ण, अश्वत्थामा, राजभवन की चिड़िया उतरकर मध्यस्थ सिंह मूर्ति के पास पहुंच चुके थे। यह मुझको सौंत से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वे दोनों आपस में शायद कुछ बातें करते जा रहे थे। इतने में ही सामने महाद्वार से मेरी बहन युवराज्ञी दोशला का भव्य रथ भीतर आया और क्षण भर में ही दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। रथ से दोशला नीचे उतरी, उन दोनों ने उसको अभिवादन किया। गुरुपुत्र जानकर अश्वत्थामा से कुछ कह रही थी। अश्वत्थामा से बातें करते हुए वो बार बार कर्ण की ओर देख रही थी शायद, लेकिन उसने उससे कोई बात नहीं की। अंत में अश्वत्थामा ने उसे विदा ली और वे दोनों ही महाद्वार से ओझल हो गए। मैं विचार कर रहा था कि युवराज्ञी दोशला राजरथ लेकर स्वयं समय कहाँ गई होगी। फिर मुझको याद आया कि पूर्णिमा होने के कारण देव दर्शनों के लिए वनगर के वहाँ मंदिर में गई होगी। मैंने सामने देखा, दूर पश्चिम क्षितिज पर सूर्य अस्त होता जा रहा था। उसकी लंबी स्वामी किरणें राजभवन के उच्च मस्तक को स्पर्श कर रही थी। उस तेज पिंड की ओर क्षण भर एकटक देखने के बाद मुझको बार बार ऐसा लगता था कि इस तेज के धधकते द्रव से मिलता जुलता ही कोई पदार्थ सदैव मेरे आसपास घूमता रहता है, लेकिन प्रयत्न करने पर भी उसका निश्चित रूप ध्यान में नहीं आया। अंत में मैंने विचारना ही छोड़ दिया। 9. उस रात मैंने अश्वत्थामा के तत्वज्ञान पर गंभीरता से विचार किया, परंतु मुझको कोई संतोषजनक मार्ग नहीं मिला। उसका तत्वज्ञान कितना ही स्मरणीय क्यों न हो, परंतु जीवन में उसका उपयोग संभव नहीं था। आत्मा को विचार करने के लिए भी समय नहीं था। और फिर तत्वज्ञान तो मनुष्य के सुनने के लिए होता है, उस पर कभी विचार आचरण नहीं किया जा सकता। प्रातः शैया से उठते इस बात की मुझको तीव्र अनुभूति हुई। अश्वत्थामा के विचारों का अनावश्यक चिंतन कर मैं स्वयं को कारण एक कष्ट दे रहा था। वह कहता है कि जिस दिन मानव की आसक्ति के बंधन टूटेंगे वही सौभाग्य का दिन होगा। मैं बंधन बंधन कुछ नहीं जानता था। वह कहता है कि काल अखंड है। वह काल खंडित है या अखंडित है या मुझसे मेरा कुछ भी संबंध नहीं। मैं तो केवल एक ही काल जानता हूँ और वह है वर्तमान काल। और इसी तरह एक वर्तमान काल का प्रतिरोध हाथ में लेकर ही मैं काल को ऐसे भगाऊंगा जैसे इंद्र का समर्थ सारथी मातली अपने रथ को वेग से दौड़ाता है। मैं दुर्योधन हूँ, पर्वों का युवराज हूँ, काल की महिमा कहने वाला दुर्बल ब्राह्मण कुमार नहीं हूँ। मैं अश्वत्थामा नहीं हूँ। मैंने तुरंत ही द्रौपदी के स्वयंवर के लिए पांचालों की राजनगरी कापिल्य नगर को जाने का निश्चय किया। द्रुपद राज का निमंत्रण उसी शुभ्र प्रातः वेला में आया था। जाते समय कर्ण को साथ लेना अधिक उपयुक्त रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर वह प्राणों का दाव लगा के मेरी रक्षा करेगा। अपने भाई दुशासन और दुर्मर्श को तो मैं साथ ले ही जाऊंगा। वीर पुरुष जीवन चषक को जीवन रस से भर पूरा भर कर उसको पीने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जो भीरु होते हैं वही तत्वज्ञान की निश्चयता करते हैं। मैं स्वयंवर के प्रण में पांचाली को जीत कर हस्तिनापुर लाना चाहता था। पितामह भीष्म ने काशीराज से हमारी राजमाता महारानी अंबिका को अपने लिए नहीं जीता था, बल्कि हमारे पूज्य पितामह को महाराज विचित्र वीर को अर्पण किया था। यदि वैसा ही अवसर आया तो अंगराज कर्ण पांचालों की सुगंधित यज्ञ सेना को जीत देगा और फिर मुझसे अर्पित कर देगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि जैसे पितामह भीष्म का जन्म केवल कुरुकुल के लिए हुआ था, वैसे ही अथवा उससे भी अधिक दृढ़ता से कर्ण का जन्म दुर्योधन के लिए हुआ था। कर्ण मेरे लिए क्या क्या करेगा, यह प्रश्न मैं जब जब स्वयं से पूछता तब तब उसको उत्तर में यही प्रश्न मिलता कि वह क्या नहीं करेगा। जीवन एक अनिवार्य और अटल समझौता होता है। मैंने उसको अंगदेश का स्वतंत्र राज्य दिया था। उसकी तारों ने सुलभ भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए अच्छी तरह इस बात का पता लगा करके वृषाली से प्रेम करता है, मैंने उसका विवाह वृषाली से ही करा दिया था। इन सब बातों को वह जानता था, इसीलिए वह मुझको यह पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। 10. मैंने यज्ञ सेना के स्वयंवर में जाने का निर्णय किया, लेकिन स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने जो प्रण रखा था उसे सुनते ही मेरा मन डवाडोल हो गया। मेरी उत्कट इच्छा थी कि यज्ञ सेना कुरुओं के महाराणी बने, लेकिन उस विचित्र प्रण के कारण इस इच्छा में कहीं विघ्न न उपस्थित हुआ। इस संदेह की चिपकली मन में रेंगने लगी। वह संदेह मैंने कर्ण को बताया, क्योंकि द्रुपद की प्रतिज्ञा को सरलता से पूर्ण कर सकने वाला दो ही धनुर्धर आर्यावर्त में है, ऐसा मुझको लगता था। एक कर्ण और दूसरा अर्जुन। अर्जुन तो अवसर्ग में किसी अप्सरा के स्वयंवर की तैयारी कर रहा होगा, रह गया केवल कर्ण। यदि इसके लिए योग्य धनुर्धर है और वह इस दुर्योधन का प्राण प्रिय मित्र है, वह कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर में था। मैंने अपने सेवक रंजन को भेजकर कर्ण को बुलवाया। भवन में आते उसने आश्चर्य से पूछा, राजन आज इस असमय में मुझको याद किया। समय और असमय तो हम लोग ही निश्चित किया करते हैं। समय तो कभी सभी के लिए सुविधाजनक होता है, परंतु जो असमय को सुविधाजनक बनाकर दिखाता है वही सच्चा योद्धा है। मैंने द्रुपद के निमंत्रण उसके हाथ में दे दिया। उसने अपनी नीली तेजस्वी दृष्टि आमंत्रण के भोज्य पत्र पर स्थित कर दी। उसकी धनुषाकार विशाल सोनाली भौंहें अनजाने में ही तन गई। वह भी कपाल पर एक सूक्ष्म रेखा उभर आई। क्षण भर बाद अपने पुष्ट ग्रीवा ऊपर उठाकर वह बोला, यह तो स्वयंवर का निमंत्रण है। उन्हें समझा कि कोई राजनीतिक कठिन समस्या आ गई है, इसलिए मुझको बुलाया है। कर्ण, कोई भी राजनीतिक समस्या इस स्वयंवर जैसे विकट नहीं है। यह स्वयंवर मेरा ही क्या, हम सारे कुरुओं का जीवन परिवर्तित कर सकता है। सो कैसे? एक स्त्री के लिए कुरुओं का जीवन बदल जाए, सिंहासन डगमगा जाए, तो मैं स्वप्न में भी यह नहीं सोच सकता। चाहे वह कितने ही सुंदर क्यों न हो, उसके आरक्षक कितने बलवान क्यों न हो। नहीं कर्ण, यह साधारण स्त्री नहीं है। द्रुपद राजा को साक्षात यज्ञ से प्राप्त अग्निकन्या यज्ञ सेना है। उसके संपूर्ण देह से चंपा के फूल जैसी गंध आती है। वह जन्मजात सुगंध का पात्र है, जैसे तुम्हारे ये कुंडल जन्मजात है वैसे ही। तो क्या होगा, वह कुरुओं का जीवन कैसे बदल सकती है? वह यदि महारानी बनकर मेरी पत्नी बनकर इस हस्तिनापुर में आ जाए, तो यह राज्य वैभव के शिखर पर चढ़ जाएगा। मैं तो अपने जीवन में स्वर्गीय आनंद का अनुभव करने लगूंगा। यज्ञ सेना मेरी बने या मेरी जीवन की सबसे बड़ी साध है। उसको भी इससे अधिक और सौभाग्यशाली जीवन साथी कहाँ मिलेगा? कौन ऐसी स्त्री है जो कुरुओं की महारानी नहीं बनना चाहेगी? स्वयंवर में जाने में कुछ भी हानि नहीं। मन में आई हुई बात योद्धा को कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। कर्ण, यह बात मैं नहीं समझता हूँ, ऐसा लगता है क्या मुझे तुम्हें, लेकिन यज्ञ सेना के स्वयंवर के लिए उसके पिता ने जो प्रण रखा, उसको जानकर तुम जैसा धनुर्धर भी कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। ऐसा कौन सा प्रण है? सुनो, पांचालों की राजधानी कापिल नगर में अपने राजभवन के सामने विशाल प्रांगण में द्रुपदों ने एक भव्य मंडप बनाया है। उस मंडप के मध्य भाग में पत्थर का एक सरोवर बनाया गया है। उस सरोवर में गंगा और इक्षुमती इन दो पवित्र नदियों के संगम का स्वच्छ जल भरा गया है। एक वर्तुलाकार गतिमान मत्स्य यंत्र मंडप की छत में इस तरह टांगा गया है कि उसका प्रतिबिंब सरोवर के मध्य में दिखाई पड़ता है। नीचे सरोवर में प्रतिबिंब की ओर देखकर उस मत्स्य यंत्र की लकड़ी की मछली की निरंतर फिरती हुई आंख को सूचीपाड़ द्वारा अचूक भेदना है, और वह भी वहां रखे जाने वाले अत्यंत भारी साक्षात शिव धनुष। तो फिर इसमें असाध्य क्या है राजन? तुम्हारे लिए तो कुछ भी असाध्य नहीं। लक्ष्य को बिना देखे ही केवल ध्वनि के सारे पक्षणी की चोंच को भेदने वाले सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो तुम। मुझे तो गदा चलाना आता है, यह सब कैसे कर सकता है? तो फिर तुम स्वयंवर में जाने का विचार छोड़ दोगे क्या? तुम अस्वीकार कर दोगे तब तो मुझको यही करना पड़ेगा। मेरे अस्वीकार से इसमें क्या संबंध? कारण मैं जानता हूँ कि यह कठिन प्रण तो तुम्हारे और अर्जुन के अतिरिक्त इस आर्यावर्त में और कोई पूर्ण नहीं कर सकता। अर्जुन तो अभी संसार में सदैव के लिए जा चुका है, अब तुम्ही को यह प्रण जीतना चाहिए। मुझको? राजन, मैं सूत पुत्र हूँ, या तुम भूल गए हो क्या? एक क्षत्रिय कन्या मुझको वरमाला पहनाने के लिए क्या कभी आगे आ सकती है? और अन्य कोई स्त्री विशाली से अधिक सुंदर हो सकती है, इस बात पर मेरा विश्वास ही नहीं। कर्ण, तुम यज्ञ सेना का प्रण पूरा कर जीत लो। यदि वह तुम्हें अस्वीकार करेगी तब क्या करना है यह मैं देख लूंगा। अपने लिए नहीं, केवल मेरे लिए तुम इस प्रण को जीतो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। जिस प्रकार पितामह भीष्म ने काशीराज की कन्याओं को जीतकर तुम्हारे पितामह विचित्रवीर को समर्पित की थी, उसी प्रकार मैं यज्ञ सेना को तुमको अर्पण करूंगा। कुछ रुक कर वह आगे बोला, मैं यज्ञ सेना का कमल पुष्प तुम्हारे चरणों पर अर्पण करूंगा, परंतु एक शर्त। कैसी शर्त? कहो, बिना सुने मैं इसको स्वीकार करता हूँ। इस प्रण में सबसे अंत में भाग लूंगा। इसके अतिरिक्त विजयी होने पर तुमको मेरी एक इच्छा पूरी करूंगी। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैंने जिस ग्राम में जन्म लिया है, जहाँ मेरा पालन हुआ है, वह चंपा नगरी भाग्य से अंग देश में हुई। मेरे उस जन्म ग्राम को तुम्हें राजधानी के रूप में मान्यता देनी होगी। उस नगरी के पुनर्वास की घोषणा तुम कापिल्य नगर में ही कर देना। कर्ण, तुम सचमुच धन्य हो। अरे यज्ञ सेना के बदले में यदि तुम कुरुओं का यह संपूर्ण राज्य भी मांगते तो मैं दे देता, लेकिन तुमने क्या मांगा कि अपने जन्म ग्राम का पुनर्वसन। सचमुच ही कर्ण, तुमने स्वार्थ प्रेम के दिव्य प्रतीक। मैंने उसको भुजाओं से कस लिया, वह भावा विभूत हो गया। मेरा हाथ अपने हाथ पर लेकर उसने स्नेह से धीरे से थपथपाया। आह, कर्ण कौन था यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आज संध्या समय ही हम लोग स्वयंवर के लिए चल देंगे। सत्यसेन साथ होगा, इसीलिए और बातों ही बातों में कापिल नगर पहुंचा देगा। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं उसे यात्रा की तैयारी करने को कहता हूँ। वह उठा और धीरे धीरे पैर रखता हुआ किसी वनराज की तरह भवन से चला गया।